چال فرشتوں جیسی ہو جو کال وشیش نوائے ہر حال میں یوں خوشحال رہو جو جگ نحال ہو جائے اور چال فرشتوں
शांति। कल जो चलने वाली अभिक्त मुरली है 7185 नए वर्ष के विशेष संकल्प मास्टर विधाता बनो मुरली का टाइटल है। इसमें मुझे टीचर से मुलाकात पहली पैराग्राफ मिला हुआ है। उससे पहले जो मुख्य मुरली है उनको एकदम शॉर्ट में हम देखेंगे। वैसे तो भाई साहब ने इंग्लिश में रिवाइज कराए हैं उसको। एक होता है दाता, दूसरा विधाता और तीसरा वरदाता। तो दाता भी बाबा, विधाता भी बाबा और वरदाता भी बाबा। इस मुरली में बाबा विधाता की बात की है कि बाबा स्वयं विधाता है और हम बच्चों को मास्टर विधाता के रूप में देखते हैं। और मास्टर विधाता आप बच्चे हो तो वो गुण आपके अंदर है कि नहीं? विधाता अर्थात विधान बनाने वाला, कौन सा विधान बनाने वाला? संगम युग का विधान और सत्ययुगी दुनिया का विधान। वो किसके सहयोग से बनेगा? हम बच्चों के सहयोग से बनेगा। तो बाबा कहते हैं मास्टर विधाता अर्थात ज्ञान में मास्टर विधाता बने हो, हर गुण हर शक्ति सहयोग देने में मास्टर विधाता बने हो। आप बच्चे अपने आप को चेक करो, अगर नहीं बने हो तो अभी बनना है। मास्टर विधाता अर्थात सदा सहयोग देने वाले। मास्टर विधाता हमेशा फ्राक दिल होते हैं, छोटे दिल वाले नहीं, विशाल दिल वाले, बड़ी दिल वाले। मास्टर विधाता पालनहार होते हैं, पालना करने वाले, पालना लेने वाले नहीं। हमने बहुत पालना ले ली, अभी हमें पालना देने की जरूरत है। मास्टर विधाता संतुष्ट रहते हैं और संतुष्ट करते हैं। मास्टर विधाता मांगने वाले नहीं, देने वाले। सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रिगार्ड चाहिए, केयर चाहिए, ये सब मांगने वाले नहीं। सम्मान रिस्पेक्ट रिगार्ड केयर करने वाले, देने वाले। राजवंशी होते हैं मास्टर विधाता के अंडर में। पांच तत्व और विश्व की बादशाह उनके अंडर में होते हैं, इसीलिए कुछ भी मांगना नहीं चाहिए उनको। हद की इच्छा रखने वाले नहीं, हद की इच्छा रखने वाले कभी अच्छा नहीं बन पाते हैं। अगर अभी हम सम्मान पाएंगे तो सत्ययुग माया से हमें सामना करना पड़ेगा। और इसमें बाबा ने बताया है मधुबन के लिए बहुत अच्छा, जो मैंने पहली बार सुना। मधुबन जो है सच्चा सच्चा अल्लाह का, सच्चा सच्चा अल्लाह का ये आबाद किया हुआ स्थान है ये मधुबन। ये थी मुरली। और जो टीचर से मुलाकात है बाबा का, टीचर्स बाबा भी हमें तीन रूप में, हम बच्चों से बाबा के साथ हमारा तीन संबंध है, बाप का, टीचर का और सतगुरु का। तो जो भी टीचर्स है, जैसे बाबा टीचर बन के हमको पढ़ाते हैं और टीचर होते हुए, बाप होते हुए, सतगुरु होते हुए भी कहते हैं बच्चे विश्व सेवाधारी हूं, वर्ल्ड सर्वेंट हूं, मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूं बाबा कहते हैं। तो इस मुरली में भी टीचर्स अर्थात सेवाधारी कि जो गुण है, विशेषता है, उसके बारे में क्या गुण होनी चाहिए उसके बारे में, और सेवाधारी बनने से क्या फायदा है वो भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह बताया है। तो जब टीचर्स की बात आई या जब हमने ये मुरली पढ़ा तो मुझे एक जो हमारे जीवन के साथ घटना घटी है वो हम आपको बताते हैं। हमारा जो लौकिक टीचर थे वही अलौकिक टीचर बना। उनके घर में हॉस्टल था, जिनके उनके ही घर में हम रहते थे और पढ़ाई करते थे। हमको ये नहीं पता कि हमारे में क्या विशेषता थी, हमारे अंदर तो कोई भी विशेषता नहीं थी, लेकिन वो टीचर ने हमें प्यार देके, पालना देके, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की पालना दी, भोजन खिलाना, क्योंकि घर में तो कोई ज्ञान में नहीं थे, उनके घर में गीता पाठशाला था, हम तो घर से थोड़ी दूरी पर जाके पढ़ाई करते थे। इतना प्यार दिया, इतना पालना की कि हम बाबा के बन गए, और बाबा के बन के बाबा के जीवन साथी बना के रहने का हमने फैसला किया उनकी पालना पाकर। उनके अंदर इतनी विशेषता थे कि उनका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लास्ट घड़ी की बात उनको हम बताते हैं आपको। उनकी युगल जब बीमार थे तो वो गए थे अपने गांव से किसी शहर में ट्रीटमेंट करने के लिए, और लॉज में रुके हुए थे, और मुरली पढ़ते पढ़ते उन्होंने इस शरीर को त्याग किया। ऐसा भाग्य शायद बहुत कम ब्राह्मणात्माओं को मिलता है। हम उस समय मधुबन में ही थे। तो टीचर्स अर्थात सेवाधारी, कितना दिल से उन्होंने हमें सेवा किया वो हम संगम में तो भूल ही नहीं सकते हैं। बाबा तो है, लेकिन बाबा ने किसी निमित्त आत्मा को बना के पालना करते हैं। तो ऐसे हमें विशेष टीचर्स अर्थात सेवाधारी बनना है। तो बाबा ने इस पैराग्राफ में बताया है टीचर्स अर्थात शक्तिशाली, टीचर्स अर्थात सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात शक्तिशाली। अपनी शक्तिशाली स्थिति से दूसरों की शक्तिशाली स्थिति बने के निमित्त बनने वाली सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात हमेशा स्वउन्नति के, हमेशा स्वउन्नति करने वाले और दूसरों को स्वउन्नति कराने वाले, दूसरों को उन्नति कराने वाले टीचर्स, सेवाधारी अर्थात सदा देने वाले, लेने वाले नहीं, देने में ही लेना समाया हुआ है। सेवाधारी सदा बिजी रहते हैं, बिजी होने के कारण माया जीत होते, माया उनके पास आ नहीं सकते, दूर से ही देख के बोलते ही बिजी है, इनके पास जाने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी आते हैं, लेकिन अगर हम बिजी है तो दूर से नमस्कार करके चले जाते हैं दूसरे को ढूंढने के लिए। सेवाधारी अर्थात ताजा मेवा खाने वाले, ताजा मेवा व ताजा फल खाने से हेल्दी होते हैं, हेल्दी होने के कारण कोई बीमारियां नहीं आती हैं, और बीमारियां नहीं आती इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि ताजा सब्जी और ताजा फल खाओ। सेवाधारी बनना अर्थात सब प्रकार की विटामिन्स प्राप्त करना। सेवाधारी कितने भी उलझन में उलझे भी हो, लेकिन वो सदा खुशी में नाचते रहते हैं। सेवाधारी भले तन से बीमार हो, लेकिन मन उनका सदा तंदुरुस्त रहता है। इसी कारण से सेवाधारी बाप के श्रेष्ठ संबंध में समीप रहते हैं और परिवार के श्रेष्ठ संबंध में भी समीप रहते हैं। तो ये थी पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर में हमने सुना कि डॉक्टर्स बोलते हैं ताजा फल और ताजा सब्जी खाओ, और ताजा फल ताजा सब्जी खाने से सब प्रकार की विटामिन आती है और कोई भी बीमारी नहीं लगती है, और बाबा ने भी कहा सेवाधारी अर्थात हर प्रकार की विटामिन प्राप्त करने वाला। तो हम ब्राह्मण जीवन में किस प्रकार से सेवा करें तो हमें हर प्रकार की विटामिन्स प्राप्त होगी इस ब्राह्मण जीवन को। तो विटामिन्स का तो बहुत प्रकार है, लेकिन हम कुछ निकाले हैं। पहले है विटामिन ए। विटामिन ए किस चीज से प्राप्त होती है, कौन सी फल में और कौन सी सब्जी में? तो देखा गया है कि विटामिन ए पपीता और आम में और हरे पत्ती वाली सब्जियों में, भाजियों में पाया जाता है। अगर ये हम खाते हैं तो हमारी आंख की रोशनी कम नहीं होती है और हमारी आंख हेल्दी होती है, और भी शरीर के कई सारे फायदे होते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में विटामिन ए प्राप्त करना हम कैसे प्राप्त करेंगे? विटामिन ए प्राप्त करने के लिए स्वयं को आत्मा समझकर सामने वालों को आत्मा देखेंगे तो हमें विटामिन होगी। आत्मा समझ के उनके साथ व्यवहार में आएंगे, उनके साथ कर्म करेंगे, उनके साथ बोले बात करेंगे, उनके साथ चलेंगे, तभी हमें विटामिन ए प्राप्त होगी। पपीता नहीं, आत्मा समझना। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी में B1, B6, B2, B12 आता है। विटामिन बी किस चीज में प्राप्त होती है? देखा गया है विटामिन B1 अनानास में, बेल, पपीता और लीची में। B12 दूध में प्राप्त होता है और नॉन वेज में। और B6 में किस में प्राप्त होता है वो हमारे डॉक्टर से बता देंगे कभी। अगर विटामिन B1, B2, B12 की अगर कमी है तो हमें पैरालिसिस भी हो सकता है, कई सारी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए हमारे डॉक्टर साहब अभी खास बीके को B12 की कमी होने के कारण से कई सारी बीमारियां ना हो इसलिए B12 की इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में B1, B2, B6, B12 की कमी ना हो उसके लिए क्या किया जाए? बाबा को, स्वयं को बाबा के विशेष बच्चा समझना है, बाबा को देखना है और बाबा के विशेष बच्चा समझकर सामने वाला को बाबा के विशेष बच्चा समझ के देखना है। तभी इस ब्राह्मण जीवन में पैरालिसिस से हम बच सकते हैं, नहीं तो बहुत से ब्राह्मण कमजोर हो जाते हैं। तीसरे है विटामिन सी। विटामिन सी कौन सी चीज में प्राप्त होते है? आप सब तो समझते होंगे, संतरा में, मौसमी में। नींबू में, जो खट्टे चीज है उसमें। वैसे ब्राह्मण जीवन में विटामिन सी हम किस प्रकार की सेवा करेंगे तो हमें विटामिन सी प्राप्त होगा? भगवान को कंपेनियन बना के रखेंगे और भगवान के कंपनी में रहेंगे। भगवान को कंपनी बना के रखेंगे और भगवान के कंपनी में अगर हम रहते हैं तो हमें ब्राह्मण जीवन की विटामिन सी प्राप्त होती है। अगर भगवान के कंपनी में नहीं रहेंगे, कंपेनियन नहीं बनाएंगे तो विटामिन सी की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा है विटामिन डी। चौथा है विटामिन डी। विटामिन डी डॉक्टर साहब बोलते हैं कि धूप में बैठो, लेकिन ब्राह्मण पूरा शरीर में कपड़ा ही पहना रहता है, इसलिए धूप में बैठ के भी कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए D3 की गोली और D3 की इंजेक्शन लगाना पड़ता है और गोली खिलाना पड़ता है। अब ब्राह्मण जीवन में विटामिन डी हम कैसे प्राप्त करें? ब्राह्मण जीवन में विटामिन डी प्राप्त करने के लिए हमें ड्रामा पे अचल अडोल रहना है। ड्रामा भगवान को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। इस ड्रामा में हरेक आत्मा का पार्ट फिक्स है। इस ड्रामा में जो हो रहा है वही होना चाहिए, उसी में कल्याण समाया हुआ है। अगर इस बात की नॉलेज अगर बुद्धि में रहे तो हमें विटामिन डी प्राप्त होती रहेगी। अब रह गई विटामिन ई। विटामिन ई प्राप्त करने के लिए मूंगफली, बादाम, टमाटर, ब्रोकोली ये सब अगर खाते हैं तो हमें विटामिन की प्राप्त होती है। विटामिन ई की कमी से और भी बीमारी होती होंगी, लेकिन बाल झड़ता है इतना बताते हैं। ब्राह्मण जीवन में विटामिन ई की प्राप्ति कैसे होगी? ब्राह्मण जीवन में अगर हमारी नेचर इजी है क्योंकि कड़ा जो संस्कार है ना बहुत ज्यादा नुकसान करता है। दीदी हमेशा कहती थी झुक झुक सिक सिक मर मर। हमारे जीवन हमारी नेचर पूरा इजी हो और बाबा के याद में हम बिजी हो तभी हम विटामिन ई की प्राप्ति कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। सबसे लास्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के किस में प्राप्त होता है? विटामिन के बताते हैं पालक, हरा मटर, गोभी, हरा सब्जी सभी में। तो ब्राह्मण जीवन के में विटामिन के कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम किंगडम को याद करेंगे, सत्वगी किंगडम को, तभी हमें विटामिन की प्राप्ति होगी। अगर विटामिन सभी विटामिन हमें मिलते रहेगा तो हमें कोई प्रकार की बीमारी ब्राह्मण जीवन में नहीं लगेगी और हम सच्चे सेवादारी बन के बाबा के सामने हम सपूत बन सपूत दे सकते हैं। अगर इन सब बातों को हमने याद रखा, बुद्धि में रखा, तो हमें माया परेशान नहीं करेगी। हमें दूसरों को मान शान रिगार्ड चाहिए ऐसे मन में संकल्प नहीं आएगा और इस ब्राह्मण जीवन में हम आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। मुरली जो है 7185 की मुरली, उसमें विधाता बनने के लिए जो हमारे बूस्टर डोज दे के गया उसके ऊपर और क्या बता सकते हैं। फिर भी इस समय जो हम अपनाएंगे वो हमारा कल्प कल्प साथ रहेगा। तो इसमें बाबा ने जो हमारा पढ़ाई है उसको दी बेस्ट तो बोल दिया आज मुरली में, तो उसी अनुसार उसमें भी हमें क्या कैसे बनना है, निमित्त बन के, क्योंकि हमारा निमित्त जब हम होंगे निमित्त के आधार से वो दो तीन चीज आता है जो करण करावनहार करा रहे हैं हमारे द्वारा और हम निमित्त बन के कर रहे हैं तो उसमें मैपन नहीं आता है। तो हर टाइम समझना है जो करण करावनहार करा रहे हैं और हम कर रहे हैं। जैसा बाजीगर वो काठपुतली नचाता है वो उसको दिखाई नहीं पड़ता है, उसके धागे के द्वारा वो बहुत सारे कला प्रस्तुत करते हैं। तो उसी अनुसार हर टाइम बाबा करा रहे हैं, ऐसा समझने से हमारा सेवा सहज हो जाएगा और सफलता भी आएंगे। दूसरी बात है जो हर टाइम हम बाबा बाबा करते रहें, तो बाबा का यज्ञ है, बाबा का हम बच्चे हैं, बाबा का हर कार्य है, बाबा का सेवा है, ऐसा करते रहेंगे अनहदनाद अंदर से चलता रहे तो सेवा में मैपन नहीं आएगा और मैपन नहीं आएंगे तो हम सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अगर मैपन आ गया तो कभी उड़ती कला कभी चलती चढ़ती कला कभी चलती कला में चलना पड़ता है। तो उसमें सफलता ज़्यादा हर टाइम नहीं होके कभी मेहनत लग सकता है। इसलिए बाबा हर टाइम हम लोग को इंस्ट्रूमेंट बना दिया। इंग्लिश में दिखाए निमित्त का अर्थ है इंस्ट्रूमेंट, यंत्र। जैसे इसको हम थोड़ा भावार्थ देखेंगे, जब कोई लक्ष्मी नारायण बनता है ना, कुमार कुमारी से एजेड होके जब लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उसके बीच में एक घटक रहता है, तो वो दोनों के मिला के शादीशुदा कर देता है और आ जाते हैं। हाँ, दूसरा दूध, जब पनीर बनता है, दही बनता है, उसके बीच में भी एक घटक रहता है। ये दूध ये सब उपादान है, लेकिन उसके बीच में खटास डाल दो तो वो दूसरा चीज रूप लेता है। उसी अनुसार इस पढ़ाई में जो बोला है, मनुष्य से तुमको देवता बनना है, तो मीडियम कौन है? हम जब ज्ञान में आए थे, हमारे लिए कोई घटक दूसरे थे। अभी हम को निमित्त बनना है, घटक बनना है, क्योंकि सारे जिज्ञासु सब आ रहे हैं, उसको बाबा का परिचय देकर उसको बाबा का वारिस बनाना है, बाबा का जितना भी प्रॉपर्टी है उसको हकदार बनाना है। तो उसके लिए निमित्त कैसे होंगे? तो ये हमारा है कार्य। अभी निमित्त आप देखिए, निमित्त को वार्ड, एक एक वार्ड को डिवाइड कर दीजिए, न निमित्त, नी म ई आर त आर त। इसमें आप पहला अक्षर में देखो, जो नी, नी में क्या आता है? निर्माण। निर्माण मतलब हम्बल, नम्र। जितना आप नम्र बनेंगे तो उतना आप महान बन जाएंगे। अगर निमित नम्र नहीं होंगे, हार्डनेस होगा, जैसा कोई पेड़ में फल होता है, वो क्या होता है, झुक जाते हैं। तो हमारे भी एक दादी का महामंत्र है, झुक झुक मर मर सिक सिक। जैसा फल दीदी का, जब फल लगता है तो वो झुक जाता है, तो उसी अनुसार हमें भी फलीभूत बनना है, अर्थात आपसे लोग कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, उसके लिए हमें पहले झुकना पड़ेगा। और ब्राह्मण जीवन में एक तो पहला हमारा श्लोगन, मर्जीवा जन्म, पहले ही मरना है, बाद में आपको जो कुछ मिलना है वो मिलेगा, पहले मरना ही है। और उसके बाद क्या है, उसके अंदर ये दोनों चीज करेंगे तो आपको कुछ शिक्षा मिलेगा। उस शिक्षा के आधार के, जैसे आज मुरली में है ना, पढ़ाई दी बेस्ट, उसके अंदर आप बेस्ट पद प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण पद जैसा बोलते हैं। तो न में निर्माण नम्रता आ गया, म में महान। ये महान कैसे बनेंगे? ये जो सारे विधि बता रहे हैं बाबा, ये जो हर दिन मुरली में पॉइंट दे रहे हैं, जो जो शिक्षाएं दे रहे हैं, हर दिन हम एक एक पॉइंट को अपनाएंगे, जीवन में धारण करेंगे, उसमें हम महान बन जाएंगे, महिमा यज्ञ बनेंगे। अगर हर दिन का कार्य हम नहीं करते हैं तो क्या होगा? उसने हमारे स्टूडेंट में दो प्रकार बता दिया, एक है स्मार्ट और एक, तो उसके बाद भी और एक स्टूडेंट होता है, उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। तो बाबा ने हर टाइम बोलते हैं, इस पढ़ाई में तुमको हर टाइम एक सिंसियर, नहीं तो स्मार्ट रहना है, नहीं तो दूसरे कैटेगरी में चले जाएंगे। आप देखेंगे महाभारत में, जब अंबिका अंबालिका का कोई संतान नहीं थे, व्यास जी को बुलाया और उन्होंने दृष्टि से दृष्टिपात कर दिया, उसमें संतान पैदा हो गया, लेकिन पहला दोनों वो सहन नहीं कर पाया, उसमें कोई अंधा हुआ, कोई पांडुवर्ण हुआ। बाद में जब दासी आए तो उसका संतान कैसे हुआ? बुद्धिमान। वो उनके धृतराष्ट्र पक्ष में थे, दुर्योधन के पक्ष में थे, लेकिन वो निर्लिप्त थे। अब देखो, जब निर्णायक युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध हुआ, उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, उन्होंने साक्षी होकर चले आए। उनका जीवन कैरेक्टर ऐसा है, श्री कृष्ण जब आए उसके द्वार में, उसके आतिथ्य स्वीकार किया, लेकिन उसके घर में रहा नहीं। किसके घर में पहुंच गए? विदुर के घर में। उसमें साग जो कुछ है वो खाके उन्होंने संतुष्ट हो गए। उसी प्रकार बाबा जिस टाइम हमें पढ़ा रहे हैं महान बनाने के लिए, तो हम भी उसी टाइम वही कार्य करें तो अंत समय पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। बाबा बोले ना, सजा खाके कही जाते हैं, सहन करना पड़ता है, बाद में पाई पैसे की पद प्राप्त होता है, उसमें क्या लाभ है। इसीलिए बाबा ये जो मैंने बाबा का जो पढ़ाई है इतना पावरफुल है, उसको हम सदा नेग्लेक्ट नहीं करें, सब अपना चीज है सोच करके उसको अमल में लाए तो हमारा जीवन विदुर जैसा बन जाएगा। तीसरा त और त, पहला त है तत्पर। बाबा का तीन संकेत है पढ़ाई में, अचानक एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। अचानक मतलब हमारे डॉक्टर साहब एक स्टोरी बताते हैं, कोई शिष्य और गुरु के साथ ऐसा हुआ था जो उसके साथ युद्ध करना पड़ता था, तो कभी खाना खाने में कभी नींद में हो, तो उसको हर टाइम शस्त्र साथ में रखना पड़ता था। तो उसी प्रकार भी हमारा हर टाइम एवरेडी, कभी बुलावा आए किस क्या पता है, इसीलिए हर टाइम हमें तत्पर रहना है। अचानक कुछ भी घटना घट सकते हैं, हर घड़ी अंतिम घड़ी ये समझ कर चले तो हमारा जीवन बेस्ट बनेंगे, पढ़ाई दी बेस्ट। तीसरा जो लास्ट का तो है वो क्या है, तल्लीन अवस्था, अर्थात बाबा के प्यार में हो, बाबा का पढ़ाई में हो, बाबा के शिक्षा में हो, बाबा के सेवा में हो, ऐसा हम तल्लीन रहे, खोए रहे, ताकि बाहर का दुनिया का कुछ भी तत्पर नहीं हो। अब देखेंगे विष्णु का उसको कहां दिखाते हैं, सैया के सैया के ऊपर, सागर के ऊपर दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारे चारों तरफ क्या है, पांच विकार रूपी सागर में भरा हुआ है। पांच विकार को बाबा ने सांप के साथ तुलना किया है, और पांच विकार के साथ बाबा के साथ आप इतना तल्लीन होकर रहेंगे, ये पांच विकार लास्ट में आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, कोई ठेस नहीं पहुंचाएंगे, वरन वो आपका सेवाधारी बन जाएंगे। उस दिन कुछ दिन मुरली के में था ना, जो नाचने वाले स्टेज बन जाता है, तो ये भी हमारा आराम से सोने के लिए पलंग बन गए, स्टेज बन गए। और सागर, विषय सागर जो सारे दुनिया में जितना भी है, धन दौलत माया जो भी बाबा बोलते हैं, ये पंपिया है, माया का पंप है, ये सारे चकाचौंध क्या होता है, ये कुछ नहीं है। उस तरफ हमारा दृष्टि नहीं जाके हम अंतर्मुखी रहेंगे, इस बाबा के प्यार में तल्लीन रहेंगे, तो हमारा जीवन क्या होगा, ये सारे सब विषय सागर क्षीर सागर में रूपांतर हो जाएंगे और हमारा जीवन बेस्ट बन जाएंगे। तो हम आए थे कि कैसे, हम जब परमधाम से आए थे घर से कैसे आए थे, स्वतः प्रधान होके आए थे, फिर जाना है कैसे, स्वतः प्रधान होके, तो बीच में हमें क्या कैसा रहना है, निमित्त बन के रहना है, कराने वाला करा रहे हैं और हम निमित्त बन के कर रहे हैं। इसी समान लेकर हम रहेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारे उन्नति होगा। लास्ट में बाबा जो बोलते हैं, तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इस आंखों से भी अंदर महसूस होगा जो हम कौन सी पथ पाएंगे, नहीं तो बाद में वो अम्बालिका जैसा है ना, तो ऐसा दूसरा दूसरा कुरूप संतान, कोई अंधा होगा कोई ये होगा। तो हमारा कार्य व्यवहार में हम जब सेवा में जाएंगे तो हमारा निमित्तपन का जितना अभ्यास होगा, कोई जिज्ञासु जैसे आएंगे वो हमें देख उसको लगेगा जे यही बेस्ट पढ़ाई है, दुनिया वाले कुछ नहीं जानते हैं कौन सी पढ़ाई ये चल रहे हैं, तो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो उसका भी कदर रखना है। ओम शांति।